मुल्ला दाऊदकृत चंदायन पृष्ठ 87। अभी तक प्राप्त जानकारी के आधार पर मुल्ला दाऊद को हिंदी का प्रथम सूफी कवि सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। मुल्ला दाऊद उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के डलमऊ नामक नगर के रहने वाले थे। वे फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे। रायबरेली के डिस्ट्रिक्ट गजेटियर से विदित होता है कि उन्होंने हिजरी सन 779 ईस्वी अर्थात सन 1377 ईस्वी में चंद्रौनी नामक ग्रंथ का संपादन किया था, लेकिन अंतःसाक्ष से चंदायन की रचना हिजरी सन 781 अर्थात सन 1379 ईस्वी होने का पता चलता है। बरे सात ते होई 81 तिहि याह कवि सरसेउ भासी। गजेटियर में प्रयुक्त चंद्रायणी तथा संपादन शब्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मुल्ला दाऊद के समय में लोरिक चंदा की कथा अत्यंत लोक प्रसिद्ध थी। मुल्ला दाऊद ने इसी लोक कथा को अपने ढंग से मसनवी का रूप दिया तथा मूल को लोक कथा में कतिपय विस्तारों द्वारा अपनी कतित्व कवित्व शक्ति का प्रदर्शन किया। चंद्रायणी के संपादन से गजेटियर का अभिप्राय यही है। गजेटियर के संपादक का कार्य केवल सूचना एकत्र करना था, साहित्य का इतिहास लिखना नहीं। इसलिए उसने निश्चय ही मूल प्रति देखने की आवश्यकता नहीं समझी होगी, अन्यथा उपर्युक्त अंतःसाक्ष्य को देखने के बाद उसने रचना काल दर्ज करने में धोखा न खाया होता। उसे स्थानीय अधिकारियों ने जो सूचनाएं उपलब्ध कराई होंगी वही उसने दर्ज कर ली होगी। हो सकता है सूचना देने वाले को पृष्ठ 88 इसका रचनाकाल 779 ही पता हो। यह भी संभव है कि चलते चलते लोकमुख में 81 या 79 हो गया हो और गजेटियर के संपादक को ये पंक्तियां 79 कहकर सुनाई गई हो। चंदायन की अनेक प्रतिलिपियां उपलब्ध हैं, लेकिन कोई प्रतिलिपि संपूर्ण नहीं है। यहाँ तक कि कुछ प्रतिलिपियां तो मात्र 8-10 पृष्ठों पर ही आधारित हैं। संपूर्ण पाठ के अभाव में रचना का सम्यक विवेचन दुष्कर है, लेकिन विभिन्न प्रतिलिपियों में प्राप्त टुकड़ों को जोड़कर शायद किसी निर्णय तक पहुंचना संभव हो सके। इस दिशा में अंतिम प्रयास अभी शेष है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चंदायन की कहानी संक्षेप में यह है कि गोवर के राजा महर सहदेव तथा रानी फूला की संतान चंदा नामक कन्या अत्यंत सुंदरी थी। 4 वर्ष की आयु में उसका विवाह बावन वीर से कर दिया गया, जो कुरूप भी था और व्यभिचारी थी। 16 वर्ष की चंदा पति से ऊप कर नहर लौट आई। बाजिर नामक भिखारी से चंदा के रूप सौंदर्य के विषय में सुनकर राव रूप चंद उस पर मोहित हो गया। उसने चंदा को प्राप्त करने के उद्देश्य से गोबर पर आक्रमण किया। इस युद्ध में महर की सेना का धैर्य टूटने लगा तो उसने लोरिक को युद्ध में भेज दिया। लोरिक ने रूपचंद की सेना के सरदार बांठा का सिर काट दिया और शत्रु सेना को खदेड़ दिया। चंदा ने अपने धवल गृह में से लोरिक को देखा और उस पर मोहित हो गई। चंदा की सहेली बृहस्पति की युक्ति से वे दोनों देव मंदिर में मिले। लोरिक की पत्नी मैना द्वारा इस प्रेम प्रलाप का विरोध किए जाने के कारण वे दोनों गोबर से भाग खड़े हुए। रास्ते में बावन ने उन पर हमला किया, लेकिन परास्त होकर भाग निकला। लोरिक और चंदा कलिंग पहुंचे, जहां के राजा ने उनकी खूब आवभगत की। यहां से वे हरदीपाटन चले गए, जहां के राजा से सम्मान प्राप्त कर वे वहां सुख से रहने लगे। एक दिन लोरिक को मैना का विरह संदेश प्राप्त हुआ, जिसे सुनकर लोरिक और चंदा गोबर आए। लोरिक की माता ने बताया कि उसके पीछे से बावन ने उन्हें बहुत पीड़ा पहुंचाई। असफलता फिर युद्ध हुआ जिसमें सरदार कमरू मारा गया। मुल्ला दाऊद के चंदायन की कहानी यहीं तक प्राप्त होती है। इसके अनुपलब्ध पृष्ठों में कहानी ने कौन सा मोड़ लिया होगा या कवि ने कहानी का अंत किस प्रकार से किया होगा, इसके बारे में केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। लोक में प्रचलित इस कहानी का दुखांत भी उपलब्ध है और सुखांत भी। दुखांत में लोरिक और मांकर दोनों ही युद्ध में मारे जाते हैं और मैना तथा चंदा लोरिक की चिता पर सती हो जाती हैं। सुखांत में लोरिक राजा बनता है और चंदा उसकी पटरानी होती है। मुल्ला दाऊद अवधी भाषा के कवि हैं, जिसे उन्होंने हिंदू की कहा है। उनके पृष्ठ 89 द्वारा रचित चंदायन एक मसनवी है जिसे प्रेमाख्यान तो कहा जाना चाहिए, लेकिन हम इसे सूफी काव्य स्वीकार करने में असमर्थ हैं। यद्यपि डॉक्टर शिव सहाय पाठक ने इसमें सूफी विचारधारा के तत्वों की खोज करके इसे हिंदी सूफी काव्य की प्रणेता रचना सिद्ध करने का प्रयत्न किया है, लेकिन विद्वान लेखक यह बताने में असमर्थ रहे हैं कि यह रचना किस दृष्टि से सूफी दर्शन, सूफी सिद्धांत या सूफी साधना पद्धति का परिचय देती है। उनका यह कथन है कि प्रेम का मरण मार्ग, नक्षत्र में अलौकिक सौंदर्य के संकेत, नायक बाजिर आदि की मूर्छा, विरह वर्णन में अलौकिकता आदि सभी में सूफी प्रेम दर्शन को उभारने में कवि को पूरी सफलता मिली है। अपनी जगह पर ठीक हो सकता है, लेकिन अतिशयोक्तिपूर्ण सौंदर्य वर्णन में अलौकिकता की झलक तो अनेक कवियों के यहाँ मिल जाएगी। क्या इसी से इसे सूफी काव्य मान लिया जाए? चंदायन एक साधारण सी प्रेम कहानी है। एक राजकुमारी ज्योतिषों के परामर्श से एक ऐसे राजकुमार से ब्याह दी जाती है जो किसी प्रकार भी उसके योग्य नहीं है। वह नहर लौट आती है। उसे देखकर एक भिखारी तथा एक राव मूर्छित हो जाते हैं। वह स्वयं एक विवाहित योद्धा पर आसक्त हो जाती है, जिसे प्राप्त करने में वह सफल हो जाती है। वे दोनों घर से भाग जाते हैं। मार्ग में लड़ते भिड़ते वे सुरक्षित एक राज्य में जा बसते हैं। पत्नी का विरह संदेश प्राप्त कर प्रेमी प्रेमिका अब सहित अपने शहर लौट आता है तथा युद्ध करके अपने शत्रुओं को परास्त करता है। एक साधारण सी कहानी अपने समय में कितनी ही लोकप्रिय क्यों न रही हो, किसी प्रकार भी सूफी दर्शन को समझाने में सक्षम दिखाई नहीं देती। सीधे ही प्रेमाख्यान को सूफी काव्य की संज्ञा देनी सूफी साहित्य के साथ अन्याय करना है। जब तक कोई प्रेमाख्यान आत्मा द्वारा परमात्मा की खोज या गुरु के महत्व को प्रतिपादित नहीं करता, तब तक उसे सूफी काव्य की संज्ञा नहीं दी जा सकती। हम डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद के इस कथन के साथ पूरी तरह सहमत है कि इसके अर्थात चंदायन जो अंश अभी तक प्राप्त हुए हैं उनमें रहस्यवाद के कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलते। मलिक मोहम्मद जायसी ने भी अपने से पूर्व प्रचलित जिन प्रेम गाथाओं की चर्चा की है उनमें भी चंदायन शामिल नहीं है। हो सकता है जायसी को भी चंदायन में सूफी दर्शन से संबंधित कुछ दिखाई न दिया हो, अतः मैं विनम्रता पूर्वक चंदायन को सूफी काव्य मानने से इनकार करता हूँ। समाप्त।